नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इनमें आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सहनिर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास, स्वास्थ्य और औषधि, छात्रवृत्ति के संस्थान तथा एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेनेट ऑफ मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तथा मलेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से मुकाबले संबंधी सहयोग में विस्तार होगा।
सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरिटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।
भारत और मलेशिया ने संयुक्त बयान में वर्ष 2024 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में विचारधारा आधारित शासन ने छत्तीसगढ़ सहित उन राज्यों का कायापलट कर दिया है जिन्हें कभी पिछड़ा माना जाता था। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ एट 25 नजरिया बदलना, सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 7.5% की विकास दर हासिल की है। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल में उल्लेखनीय विकास हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनने की कगार पर है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से श्रीलंका को भारत के सबसे करीबी दोस्तों में से एक मानते आए हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित थैंक यू भारत कार्यक्रम में बोलते हुए श्री मार्गरीटा ने कहा कि भारत और श्रीलंका के संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देश समृद्धि एवं विकास की राह पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की सत्तारूढ़ पार्टी ने जापान के संसदीय चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर लिया है। एक टेलीविजन साक्षात्कार में ताकाइची ने कहा कि इस शानदार जीत के बाद वह विपक्ष का समर्थन प्राप्त करते हुए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। प्रारंभिक नतीजों में ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने अकेले ही 316 सीटें जीत ली हैं, जो 465 सदस्यों वाले निचले सदन में पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक 261 सीटों से कहीं ज्यादा है। 1955 में बनी एलडीपी के लिए यह रिकॉर्ड जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ताकाइची के सक्षम नेतृत्व में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। बांग्लादेश में 11 महिला और मानवाधिकार संगठनों ने रविवार को चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बांग्लादेश जमाते इस्लामी बीजेआई के अमीर शफीकुर रहमान की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई। उन पर कामकाजी महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। समूहों ने कहा कि बीजेआई प्रमुख के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पोस्ट की गई टिप्पणियां अपमानजनक हैं, जो समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करती हैं। पुरुष टी20 विश्व कप में मेजबान श्रीलंका ने कल रात कोलंबो में खेले गए ग्रुप बी के पहले मैच में आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 163 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम 19 ओवर और 5 गेंद में 143 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले कल शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के एक मुकाबले में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हरा दिया। वहीं एक अन्य मैच में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ग्रुप डी के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।